Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
एक बड़ी अच्छी बात है, मजाक की बात है, लेकिन मुझे लगा ये ठीक ही दृष्टांत है. बोले चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कोई बातें करते हैं, वह कोरी बातें होती है. मन में कुछ होता है, वाणी में कुछ होता है. अच्छा, आनंद की बात छोड़िए, जो व्यापक परमात्मा है, जागृत में जितना बड़ा परमात्मा दिखाई देता है उससे बड़ा सपने में दिखाई देता है या छोटा दिखाई देता है? हाँ, थोड़ा सोच के बोलो. जागृत अवस्था में जितना बड़ा परमात्मा दिखाई देता है अथवा जितना बड़ा व्यापक परमात्मा का वर्णन सुनते हम शास्त्रों में, सपने में वह परमात्मा उस उतना ही दिखता है या उससे छोटा होकर के दिखता है? रोज प्रेम पूरी आओ, लेकिन कुछ न कुछ तो बात रही जाती है. और सुसुप्ति में जब जाते हैं तो उससे भी छोटा होता है और बड़ा हो जाता है. अच्छा, अब चलो, हो गया निर्णय? क्या माना आप लोगों ने? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो व्यापक परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है शास्त्रों में, जागृत की अपेक्षा स्वप्न में छोटा होता है या उतना ही रहता है? बड़ा तो नहीं होगा, एक बार बड़ा जान लिया तो जान लिया. असुषुप्ति में? अच्छा, ये अभी इसका समाधान नहीं हुआ. जागृत अवस्था में हम जितने विषयों के साथ संबंध में रहते हैं, इस समय हम पूरी दुनिया को जान रहे हैं. अभी मानो हमने अपने मनोवृत्ति को फैला दिया है. यदि मन को फैलाने से व्यापक परमात्मा का बोध होता तो सपने में जो हमने देखा है वृत्ति को समेट करके, और जागृत अवस्था में हमारी वृत्तियां फैल जाती हैं. जितने जितने हमारी वृत्ति फैलेगी, जितने जितने विषयाकार वृत्ति बनेगी, उतने उतने स्वरूपाकार वृत्ति संक्षिप्त होगी. क्या होगा? विषयाकार वृत्ति के बढ़ने से स्वरूपाकार की वृत्ति क्या होगी? छोटी होगी. तो जागृत अवस्था में जिस व्यापक परमात्मा का आनंद रूप में अनुभव होना चाहिए, वो अभी कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना. और इससे ज्यादा अनुभव कहां होगा? स्वप्न में. वहां पर मन की वृत्ति संक्षिप्त होती चली जाएगी और इसीलिए स्वरूप की वृत्ति भी ज्यादा ज्ञात होगा. वहां पर स्वरूप वृत्ति ज्यादा बढ़ेगी और विषय वृत्ति, मनोवृत्ति कम होगी. हम जितने अपने को छोटा करते, एकाग्र करते हैं, उतने उस व्यापकता का अनुभव होता है. और जितने आप समझ लीजिए ना, जितना जितना अनात्मा का साम्राज्य बढ़ेगा उतना उतना आत्मा आवृत होता चला जाएगा. तो जागृत अवस्था की अपेक्षा स्वप्न अवस्था में उस व्यापक परमात्मा का अनुभव ज्यादा होता है. और जागृत अवस्था में आवृत होकर के दिखता है विषय के द्वारा. इसी को हम लोग शास्त्र पढ़ करके, आत्मचिंतन करके, मन को एकाग्र करके अनावृत करने की कोशिश कर रहे हैं. अनावृत जब आनंद होगा, ऐसे व्यक्ति का जीवन सूखा ज्ञान नहीं माना जाएगा. अब उसको प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का ही दर्शन होता है. ठीक है ना. और सुषुप्ति में जब चले गए तो वहां पर मन, बुद्धि, सारे व्यापार बंद हो गए. इसलिए वहां पर आनंद का उत्कट अनुभव होता है. जब स्वप्न, सुषुप्ति से स्वप्न में आते हैं, अब वहां मन अपना काम करने लगा. जो मन सुषुप्ति में लीन था, उसी मन से पुनः जब जगे, इसलिए लोग रोज सोते हैं और जगते हैं, तो हमारी जो वासना है, वासना कैसी रहती, जैसे जमीन में छिपे हुए बीज की तरह। इसको जैसे स्वप्न में मन रूपी जो खाद पड़ जाए, उसको उत्पन्न होने की एक जगह मिल जाती है, किसको, वासना को, और वहीं से वो अंकुरित होकर के पुष्पित पल्लवित होकर और जागृत अवस्था में ये पूरे वासना का ही विस्तार है। जागृत अवस्था में जो कुछ भी दिख रहा किसका विस्तार है, वासना का विस्तार है। और हर रोज ये अनुभव होता है, जाते हैं सुषुप्ति में, सो जाते हैं, फिर जगते हैं, फिर उसी तरह से वासना के अनुसार उत्पन्न होना, सुषुप्ति में लीन होना, नित्य प्रलय और नित्य जो है जीवन का अनुभव होता है। रोज हम लोग मरते हैं, रोज जन्म लेते हैं, यही हम लोगों का जीवन है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुट तरा या संविद उज्जृंभते। अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक और कीटाणु से लेकर के ब्रह्मा तक, जड़ पदार्थ का चिंतन करो, चेतन पदार्थों की बात कर लो, कीटाणु से लेकर ब्रह्मा तक, या ब्रह्मादि पिपील एकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी, सैवाहम न च दृश्य वस्तुति दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत चंडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। मनीषा पंचक में आचार्य लिखते हैं ऐसा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुट तरा या संविद उज्जृंभते। जागृत का व्यवहार, स्वप्न का व्यवहार, सुषुप्ति का व्यवहार जिस आत्मा की सत्ता में चलता है, फिर भी हम लोग उस व्यापक आत्मा का अनुभव जागृत अवस्था में क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग विषयों में फैल जाते हैं और जितने जितने विषयाकार वृत्ति बनती है उतने उतने स्वरूपाकार वृत्ति सिमट जाती है। वो व्यापक व्यापक का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कैसे बोल देंगे तदेको वशिष्ठ शिव केवलो हम। आम ब्रह्मास्मी बोलने से काम थोड़ी चलेगा। कल क्या बताया था, कल परसों की बात थी ना, इतने बड़े अहम ब्रह्मास्मी कहीं जहरीला मेढक की तरह न पकड़ ले, न छोड़ते बने, न पकड़ते बने, न उगलते बने, न निगलते बने। सांप ने पकड़ तो लिया है धोखे से, अब सोच रहा है कि छोड़ता हूं तो आंख अंधी हो जाएगी, खाता हूं तो जहरीला है, मर जाऊंगा। केवल आम ब्रह्मास्मी बोल तो रहे हैं लेकिन अभी हमारा मन है कैसा, बहुत ही कमजोर है, कच्चा है। इतना कच्चा है जैसे बच्चे को मास्टर डरा देते ना, बोले बच्चे बोलो दो दो चार, अच्छा दो एक तीन, तीन दो, दो एक तीन और एक दो, तभी तीन ही होना चाहिए ना, डांट दिया है फिर तीन बोलता है। एक कोई बड़ा सीधा साधा लड़का था, उससे पूछा बताओ एक गाय के कितने पैर होते हैं, तो बोला चार। दो के कितने होते हैं, तो भी बोलता है चार। तो पहले तो पहली गाय का भी नहीं बता पाया, बोले एक गाय के कितने पैर होते हैं, तो बोला मैं पूछ के आता हूं। किसी से पूछने गया तो उसने कह दिया भाई चार होते हैं, अब उसने चार याद किया। बोले अच्छा एक के चार होते तो बताओ दो के कितने होते, तो बोलता है चार। चाहे गाय बढ़ती चली जाए पैर तो चार ही रहेंगे। ऐसा होता है कई बार। वेदांत की बात श्रवण कर रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के लक्षण का विचार चल रहा है। न जागरण न वे स्वप्न को वा सुषुप्ति न वा विश्व न प्राज्ञ को न तेज सह, सबका निषेध किया है ना दस श्लोकी में। कितने नंबर श्लोक है, तो आठवां। न जागरण न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर न विश्व न वा तेज सह प्राज्ञ को वा अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणाम तुरीयस तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम्। सबका निषेध हो रहा है। सपने में जो चीज हम लोग देखते हैं, जागृत में जब उसको घटा के देखो, दृष्टांत बहुत सुंदर दे दिया है। एक बार क्या हुआ, ये जागृत और स्वप्न की जो बात आती है ना, तो हमें वो कथा याद आ जाती है। आप लोग भी सुन लो, आनंद लो। क्या है, टेंशन में तो नहीं हो ना? अरे क्या टेंशन लेना। एक महात्मा जी बड़े अच्छे, अभी है कि नहीं पता नहीं, रामकृष्ण मिशन के अच्छे पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर, संन्यास ले लिया, संस्कृत पढ़े नहीं थे वो कुछ, तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी थोड़े संस्कृत पढ़ने की इच्छा हो रही है। और उन्होंने देखा जब इसकी इतनी इच्छा प्रबल है, क्यों मना करे कि मत पढ़, बोले हाँ पढ़ो। पहले दिन गए पढ़ने के लिए, लोग सिद्धांत कौमदी, आजकल यहां भी कौमदी चल रही है ना स्वाध्याय में कुछ है, शनिवार शनिवार को। आप लोगों ने कुछ याद किया है लोग सिद्धांत कौमदी? कम से कम 14 सूत्र तो याद कर ही लेना। हो गया, ऐ उण रील रीक ए ओम ऐ यो चय भरट लड़ यम गणनम झय घड़ धस जब गढ़ धस ख फ छ ठ थ च ट तव कप य श सर हल। ये 14 सूत्र है, इस 14 सूत्र को याद कर लो, और यदि बाबुल नाथ जाते तो इसी को बोल के जल चढ़ाओ। 14 सूत्रों से जल चढ़ाओगे, पूरे वेद के मंत्र का फल मिलता है, क्योंकि वेद के सारे मंत्र इन्हीं अक्षरों से बने हैं। अपने वेद मंत्र तो पढ़ना आता नहीं, कब पढ़ेंगे कब सुनाएंगे, तो 14 सूत्र तो आसान है ना, सरल है। तो जब पढ़ने गए तो 14 सूत्र दिया गुरुजी ने, और बहुत दिन तक तो याद करते थे, याद हो नहीं रहा था। गुरुजी को जाके बोलते, गुरुजी याद नहीं हो रहा, तो बड़े जोर से हंसे गुरुजी, बोले संन्यास तुमने ले लिया, कहीं हमने पढ़ा था, बोलते ये जो संन्यास है ना, जैसे दुनिया में किसी का किसी से अफेयर चलता है ना, ये संन्यास लेना भी परमात्मा के साथ एक अफेयर है। क्या है? आप लोगों का अफेयर नहीं चल रहा अभी, ले लो संन्यास, रजिस्टर्ड हो जाते। बोले अब तो इसका काम एक ही है, शास्त्रों का पठन पाठन। तो उन्होंने कहा तुमने संन्यास ले लिया है, डॉक्टरी जानते हो, सेवा करो, अपना समय व्यतीत करो, प्रारब्ध भोगो, नहीं याद होता है तो छोड़ो, क्यों टेंशन लेना है। बड़े जोर से हंसे, तो टेंशन नहीं लेना चाहिए कभी भी। तो यह हम आपको ये सुना रहे थे कि स्वप्न अवस्था में जो चीजें होती है, झूठे होने पर भी कई बार जागृत में उसका काम सच्चा देखा जाता है, अथवा सोए हुए को उठा देता है। सपने की चीज झूठी तो है लेकिन उठा देती है। अब एक बार तीन लोग थे ऐसे, उन्होंने सोचा कि कोई कहीं बाहर चल करके पिकनिक मनाए। उसमें एक थे पंडित जी, एक था जाट और एक थे लाला जी। हाँ, आप भी थे क्या? बोल, ये तीन थे। अरे सुने हो गए, सुन लो, फिर सुन लो, बार बार सुनो, वहां पर कहना क्या चाह रहे उस पर ध्यान देना है। कई बार कथा हम लोग सुनते हैं, दृष्टांत याद रह जाता है, दृष्टांत याद नहीं रहता। दृष्टांत से महत्वपूर्ण है दृष्टांत। दृष्टांत से एक तो क्या होता है ना, थोड़ा लोगों को समझने में आसानी हो जाती है। अब आप तो आप लोग पुराने श्रोता हो, कभी कोई नए आते हैं तो उनको लगता हाँ कथा ठीक है, नहीं तो फिर सीधे वेदांत बोलते रहो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ पल्ला पड़ा नहीं। बहुत कठिन है वेदांत में, इतने जल्दी प्रवेश नहीं होता। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, रोज सुनते हो, इसलिए ठीक है, आपके लिए आसान हो गया। कोई नया व्यक्ति को भेजो एक दो दिन, वो बोलते क्या बोलते महात्मा लोग, मालूम नहीं पड़ता है, कभी संस्कार नहीं, कभी सुना नहीं, इसके लिए तो संस्कार बनाना पड़ता है। अब तीनों पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, लाला जी अपने घर से ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारे मेवा लेकर के पहुंचे, कोई अपने घर से दूध चावल चीनी, कोई चूल्हा बर्तन, तीनों के साथ जो जो चाहिए पिकनिक के सामान इकट्ठा करके, क्योंकि उनके मन में ऐसा आ गया शायद श्रावण का महीने रहा होगा, श्रावण के महीने में जिसने खीर नहीं खाई उसने अपने जिंदगी व्यर्थ गंवाई, ऐसा बोला। श्रावण के महीने में खीर जिसने नहीं खाई उसने जिंदगी व्यर्थ गंवाई। खीर बनाने का प्रोग्राम बना, अब जाट बड़े मेहनत से खीर पका रहा है, मेहनत कर रहा है। पंडित जी इतने में पंचांग लेके मुहूर्त निकालने बैठ गए, शाम का समय था, खीर तैयार हो गई। पंडित जी बोलते हैं कि मुहूर्त में तो ये बताया जा रहा है कि यदि आज ये खीर रात्रि में चंद्रमा के किरण यदि इसमें पड़े तो ये अमृत हो जाएगी और सवेरे खाएंगे तो इसका बड़ा फायदा होगा। जाट के मन में इतना गुस्सा आया कि पंडित को मुहूर्त निकालने का यही टाइम मिला, ऐसे पंचांग जाए भाड़ में। अब बोले तो बोले क्या, बोल नहीं सका, गुस्सा तो आया। भोजन तैयार हो, भूख लग रही हो और अचानक कोई रोक देवे तो कितना दुख होता है। जाट कुछ बोला तो नहीं, चुप रहा। चलो जो मुहूर्त ही निकल गया सवेरे का तो क्या किया जाए। अब तीनों रात्रि में सोते हैं अलग अलग। भूखे भजन न होए गोपाला, जैसे भूखे भजन नहीं होता खाली पेट में नींद भी नहीं आती। जाट को नींद तो आ नहीं रही थी, वो दोनों सो गए। जाट इधर से उधर करवट बदले, उधर से इधर करवट बदले, नहीं रहा गया। बोले अब जो होगा देखी जाएगी, खीर तो खा ही लेते हैं। अब इतनी भूख लगी थी कि खाते खाते अपना हिस्सा तो खाया, बाकी दोनों का हिस्सा भी खा गया। भूख ज्यादा लगी थी, खा के और जैसा बर्तन था वैसे चूल्हे पर रख दिया। अब इतने में सवेरा हो गया, रात भर उधेड़ बुन में रहते रहते खाने में उसमें सवेरा हुआ। इतने में पंडित जी लाला जी की नींद खुली। जाट तो सोया तो नहीं था, सोने की तैयारी में ही था, कहां नींद आएगी, रात तो निकल चुकी। अब ये दोनों जो सो करके उठे तो बोलते पंडित जी राम राम। पंडित जी बोलते हां जी लाला जी राम राम। इतने में पंडित जी बोलते लाला जी क्या कहूं, आज रात में भयंकर सपना देखा। जैसे सोए ना हम लोग तो मैं चला गया बनारस, और बनारस में एक जगह ऐसी जगह पहुंचा जहां शास्त्रार्थ चल रहा था। उस शास्त्रार्थ में हमें भी प्रतिभागी बनाया गया, सब लोग बैठे थे। तो हमारा जो प्रतिद्वंदी था, शास्त्रार्थ में प्रश्नोत्तर होता है, शास्त्रार्थ करने का अलग अलग तरीका। एक तो होता है केवल पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, हम पूछेंगे आप पूछोगे, और एक ने प्रश्न पूर्व पक्ष का प्रश्न थोड़ा होता है, उत्तर पक्ष वाले को जवाब ज्यादा देना पड़ता है। और एक होता है सर्किल वाला, एक ने बताया दूसरे ने बताया। जैसे ये श्लोकांत्याक्षरी होती है ना, श्लोकांत्याक्षरी आप लोगों ने तो कभी किया कि नहीं, अंतिम अक्षर में जो बोला उससे आगे अगला श्लोक बोलेगा, वो नहीं बोल पाए तो उसको आउट कर देंगे, फिर दूसरे उसको बोलेंगे, करते करते फिर दो तीन में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार होता है। तो ऐसे शास्त्रार्थ में पंडित जी बोले लाला जी क्या कहूं, जो हमारे सामने वाला प्रतिद्वंदी था वो जीत गया और मैं पराजित हो गया। मेरे सामने उसका इतना आदर सत्कार, माला पहना करके जय जयकार हो रही थी उसकी, उस दुख के मारे इतना मेरा अपमान हुआ, रहा नहीं गया, सहन नहीं हुआ, उसी दुख के मारे अभी अभी नींद खुली है। लाला जी बोले पंडित जी आपका सपना तो फिर भी ठीक था, आपसे भी खतरनाक सपना तो मेरा था। बोले कैसे लाला जी, क्या हुआ आपके साथ? बोले पंडित जी जैसे सोए ना, हम चले गए सीधे अफगानिस्तान कांधार। और छांदोग्य उपनिषद में ये मंत्र भी आता है, गंधारा ने उपसंपद्य, वहां पर ऐसा है कि ये गांधार जो है ना, जहां की गांधारी थी शकुनी, जिसका आजकल नाम है कंधार, कंधार कांड हुआ था एक बार, विमान का अपहरण हुआ था, ये भी सुना है ना। तो ये लगता है पुराने समय से वहां कैसी प्रसिद्धि है। लाला जी बोलते पंडित जी जैसे सोए ना तो हम चलेंगे अफगानिस्तान, और वहां से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खरीदे, बोरियों में भरवा के और खच्चरों के ऊपर लदवाया। रास्ते में आतंकवादी मिल गए और उन्होंने हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स लूट लिए। बस केवल उन्होंने मेरी जान बख्श दी, इसलिए अभी आपके सामने हो, नहीं तो हम भी मारे जाते। जाट ने सोचा यही मौका है अपना भी सपना बताने का, जब ये दोनों बता रहे हैं तो हम भी क्यों न बतावे। जाट भी बोलता ओ पंडित जी राम राम, लाला जी राम राम। हाँ भाई जाट राम राम बोलो। जाट बोला पंडित जी लाला जी आप लोगों ने क्या सपना देखा जो मैंने देखा, क्या हुआ? बोले इतना खतरनाक सपना सोच भी नहीं सकते। जब रात में सोए तो हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने कहा ए जाट उठ। मैं डर के मारे उठ गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे पाठ कर। बोले अभी पाठ करने से काम नहीं चलेगा, जिसके लिए मैं आया हूं वो काम तुम्हें करना है। बोले क्या करना है? बोले खीर बनाई है। बोले हाँ खीर तो बनाई है, तो खाई क्यों नहीं? बोले वो तो सवेरे का मुहूर्त निकला है, इसलिए मैं हनुमान जी हूं तू मुझे जानता है ना। बोले हाँ। तुमको जिंदा रहना है कि नहीं रहना है? बोले रहना है महाराज, क्या बात हो गई? बोले मैं कहता हूं खीर खा। हनुमान जी के डर के मारे मुझे खीर खाना पड़ा, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाता। लाला जी जाट पंडित जी बोले अरे हनुमान जी आए थे तो हमको भी उठा देते, हम भी दर्शन कर लेते। तो जाट बोलता है क्या करूं पंडित जी, आपको उठाता लेकिन आप तो बनारस चले गए थे शास्त्रार्थ करने के लिए, लाला जी चले गए थे अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, यहां तो था केवल मैं ही अकेला। अच्छा सपने में लोग चलते भी है क्या? सच्चा बहुत देर के बाद उनको होश में आते। कई बार ऐसी घटना घटी है, कोई घर से चल पड़ा तो समझ में नहीं आया छत से नीचे गिर गया और मर गए। एक बीमारी है ये भी, सपने में चलना, सपने में बात करना। बड़बड़ाते हैं कोई बगल वाला टोक दे, ए क्या बोलता है, क्या हुआ, मैं कहां बोल रहा हूं, तू ही बोल रहा है, उल्टा उसी को बोलते हैं, पता नहीं चलता है। अंदर जिसका जितना दृढ़ संस्कार होगा, सपने में शायद हम लोगों ने कभी अपने को स्वाध्याय प्रवचन करते हुए तो नहीं देखा है, क्योंकि सबसे बड़ा दोष है निद्रा दोष। जैसे ये दृष्टांत है, इसमें प्रसन्नता भी होती है, हंसी भी आती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक चले जाते हैं गांधार ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, एक चले जाते हैं बनारस शास्त्रार्थ करने के लिए, और एक के तो हनुमान जी आए भी नहीं थे, वो तो कम से कम कहीं गए थे। लेकिन विषयों के स्मरण करना अथवा मन में वह बात आ जाना, स्वप्न में मन में ही सारी सृष्टि का निर्माण होता है, और जागृत अवस्था में कह दिया कि इस विषयों के साथ इंद्रियों का जो संपर्क है, तब जाकर के उसका नाम पड़ता है जागृत। क्योंकि स्वप्न का जो लक्षण है वो दूसरा है, इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि जागरितम का, तो स्वप्न का लक्षण है करणेषु उपसंहृतेषु जागृत संस्कारज प्रत्यय स विषय स्वप्न, ये स्वप्न का लक्षण है। करणेषु उपसंहृतेषु रसवरजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते की बात की जा रही है। जागृत अवस्था में विषयों को छोड़ देने के बाद भी उस विषय के जो रस का आस्वादन किया है ना, उसके नाम सुनने से उसके बारे में कुछ ऐसा हो जाए तो वो संस्कार कहीं न कहीं से उद्भूत हो जाते हैं। जीवन में जो हमने खाया है पिया है, ऐसी ऐसी वस्तु है दुनिया में जिसका अभी हमने नाम नहीं सुना, तो उसका नाम कोई बताए भी तो हमारे मुंह में पानी नहीं आता। लेकिन जो हम खा चुके हैं और उसका कोई नाम लेवे, वो वस्तु यदि सामने दिख जाए तो नहीं रह जाएगा, सामने वस्तु आना चाहिए, वैसे वो अपना काम कर जाती। करणेषु उपसंहृतेषु नहीं, वो बोलते कौन थे वो बंगाल के दो, कोई बंगाली हो बुरा न माने, अब वहां तो बचपन से जो है मछली खाने का ही मामला रहता है। मुझे लगता है जिस दिन नामकरण संस्कार होता है तब से मछली खिलाना शुरू कर देते हैं। सारे नहीं खाते होंगे लेकिन 99% लेके चलो आप, आम बातें वहां का। और उनके लिए तो जल पुष्प है वो, पानी में खिलने वाला फूल। एक बार हम पुष्कर गए तो पुष्कर के तालाब में बहुत मछलियां हैं, आप यदि हाथ में चने लेके जाओ ना खिला तो सारी मछली आ जाती है, हाथ भी काट लेती हो कई बार खाने के चक्कर में। अब वहां बंगाली बोले हुरी बाबा देखो देखो हुरी बाबा, और कितने मछली है, उनके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि वो खाते उनके लिए वही है। तो जो दो बंगाली थे, एक बचपन में एक तो बन गए डॉक्टर, एक बन गए महात्मा। अब बहुत दिनों तक बाहर ही रहे महात्मा बनके, एक बार सोचा बंगाल जाते। गए तो अपने हुए डॉक्टर मित्र के पास रुके, बचपन में साथ के पढ़े हुए थे। डॉक्टर को मालूम था महात्मा बन गए तो खाना पीना छोड़ दिया होगा। भोजन जब बनवाया तो अपने लिए तो मछली बनवाई, उनके लिए बढ़िया शाकाहारी भोजन। जैसे दोनों भोजन करने के लिए बैठे आमने सामने, पहले वो खाए हुए थे, सुगंधी आने लगी थोड़े थोड़े नाक में। तो बाबा जी बोलते हैं डॉक्टर को, यार तू जो है पंगत भेद कर रहा है, क्या हुआ? बोले अपने लिए मछली बनवाया, मेरे लिए ये। बोले आप स्वामी जी बन गए, आपने खाना छोड़ दिया होगा ना? बोले हाँ खाना तो छोड़ दिया है, लेकिन झोल झोल तो चलेगा, झोल ले सकते हैं। कहा ठीक है। फिर जैसे झोल डालने लगा तो मछली का टुकड़ा भी गिर रहा था, तो उसको अंगुली से रोका डॉक्टर ने, क्योंकि झोल मांगा था। तो वो बोलते रहे जो प्रारब्ध में आ रहा है उसको क्यों रोक रहे हो? पहले जो खाए हुए थे वह रस संस्कार के कारण उद्भूत हुआ। कर्णेषु उपसंहृतेषु जागृत संस्कार, जागृत अवस्था में जो भी संस्कार पड़ा उसके जो स्मृति है वही स्वप्न है। जागृत में भी विषय का स्मरण हो लेकिन संपर्क न हो तो स्वप्न है, और स्वप्न में भी कई बार जो चीज झूठी है और उससे हम चल पड़ते हैं, गिर जाते हैं, ऐसा जागृत का भी व्यवहार हो जाता है। ऐसे आपस में ये घालमेल होने पर भी जागृत के भी अधिष्ठान आत्मा, स्वप्न के भी अधिष्ठान आत्मा और सुषुप्ति का तो है ही। अब उत्कट आनंद और अनुत्कट आनंद को लेकर के जो भेद किया, जागृत में विषयों के कारण हमारा आनंद आवृत होता है, बाकी जब इसी को हम निरावृत कर लेंगे तो वह व्यक्ति सूखे ज्ञानी नहीं कहलाएगा, बल्कि आनंद का प्रतिक्षण अनुभव करने वाला जीवन मुक्त होगा। लेकिन इससे पहले हमें गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा में होने वाला जो अध्यास है, जिसकी वजह से बार बार ये आवृत हो जाता है, उस पहले अध्यास को हम निवृत्त करें, फिर इस अनावृत आनंद को हम प्राप्त करेंगे। इसका फिर विचार करेंगे कल। हरिओम।